ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सब लोग यहां से ठीक से बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे ट्रस्टियों का जो इतने दूर दूर से आए हैं, इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के जन्म के इस शुभ अवसर पर आनंद के साथ उत्सव मनाने के लिए आए। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम सब अपने जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारा जन्मदिन मना के किसी को फायदा नहीं होता, ये हकीकत है। पहले हम लोग सोचते हैं कि हमें गिफ्ट मिलेगा, हम लोग विश करेंगे, लेकिन वास्तविकतः जन्मदिन जो है वो भगवान का और महात्माओं का ही मनाया जाता है। तब जाकर वो जन्मदिन मनाने से मनाने वालों को लाभ होता है, दिव्य लाभ, आध्यात्मिक स्तर पर, दिव्य स्तर पर उनको लाभ होता है। और हमारे संस्कृति में जो जन्मदिन मनाने का तरीका है वो हैप्पी बर्थडे टू यू वो नहीं है वो सब उन लोगों का है जिन्होंने हम पर 150 साल राज्य किया ना, उन्होंने अपना लाद दिया है। वो हमारे संस्कृति में हम लोग दीपक जलाकर आरती उतार के जन्मदिन मनाते हैं। जिसका जन्मदिन है उसको औक्षण यानी वो सुपारी और सोने की अंगूठी और कुमकुम और हल्दी और अक्षत और अभिष्ट चिंतन करते हुए उसका औक्षण करते हैं। और उस बालक के या उस बर्थडे बेबी जे हाथ से सबको लड्डू बांटते हैं जो भगवान को अर्पण किया हुआ है, प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं। और पाश्चिमात्य संस्कृति में प्रज्वलित किए हुए दीपों को फूंक मारकर बुझाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि शुभता उत्पन्न हो, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, कल्याण उत्पन्न हो, पवित्रता उत्पन्न हो, यह हमारी संस्कृति है। तो अभी 70 साल के बाद में क्यों ना हो, दोबारा हमारी संस्कृति जगाने का समय आ गया है कि हम कौन है, क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये हमको जानना ज़रूरी है। और एक विशेष बात है जो हमारे संस्कृति में है कि जब भी बलराम जी का जन्मदिन था उस दिन रोहिणी मैया ने उनको रोक लिया, उनको कहा आज आप गौचरण करने को नहीं जाएंगे क्योंकि आज आपको घर पे रहना है, आपका अभिषेक होगा, आपका पूजन होगा, औक्षण होगा और आज आपको अपने हाथ से साधु महात्माओं को, ग्राम्यजनों को सबको भेंट देना है, सबको दक्षिणा देना है, सबको आपके हाथ से उपहार देना है। और जो संस्कृति विदेशी है वो क्या कहती है, हमको उपहार दो, मेरा बर्थडे है, हमको उपहार दो, हमको उपहार दो। हमारी संस्कृति कहती है कि जो बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है उसके हाथ से सभी लोगों को उपहार देना है। संतजनों को देना है, वरिष्ठों को देना है, ग्राम्यजनों को देना है, गरीबों को भी देना है, सबको भरपेट भोजन कराना है, तब सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपको वस्तुएं देना है और आपको आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेना किस लिए है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये नहीं कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, बहुत मशहूर बन जाऊंगा, इलेक्शन जीत जाऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। आत्मा का कल्याण होगा, इस जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति होगी, अभी जीते जी भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, ये आशीर्वाद मिलेगा। तो ये संस्कृति बहुत महान है, ये देने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? मराठी में कहते हैं ना, देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे, एके दिवशी घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे। मतलब आप लीजिए उपहार, उपहार लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन उपहार लेते समय उनके हाथ भी ले लीजिए, ताकि देने की जो प्रवृत्ति है वो आपको प्राप्त हो। जब तक हम देने में होशियार नहीं बनते हैं, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सबको भगवान का ही दिया हुआ है। जब वो भगवान का दिया हुआ आप लोगों को देते हैं, तो भगवान आप पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर संचय प्रवृत्ति अभी नहीं है, एक्यूमुलेशन नहीं है, अभी देना चाहते हैं हम। उसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को आप कितनी भी दक्षिणा दो, वो जितनी चाहिए उतनी रखेगा और तुरंत बांट देगा। अगले दिन फिर कफल्लक बन जाएगा, फिर दक्षिणा लेगा, जितनी ज़रूरत है उतनी रखेगा, बाकी सब कुछ बांट देगा। ये ब्राह्मण का स्वभाव है, देना देना और देना। और हमको भी इस जीवन में देना और देना और देना ही होना चाहिए। गरीब व्यक्ति जो वृंदावन में आते हैं राजस्थान से, वो भगवान के लिए चार आने फेंकते हैं, 50 पैसे देते हैं, 1 रुपया देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के हाथ से, अपने हाथ से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भगवान को देते रहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो राजस्थान से चल चल के वृंदावन में आते हैं उत्सव के समय, वो अपने हाथ से भी 2 रुपये देना है तो 50-50 के 4 कॉइन बनाएंगे और सभी के हाथ से दिला देंगे। क्यों? क्योंकि सभी को देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। करोड़पति बनेगा फिर तभी देगा, आज भी देगा। गरीब ऐसे देगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको देना है। तो ये हमको विशेष देखना है कि भगवान ने, कृष्ण ने स्वयं अपने जन्मदिन पर इसी प्रकार से जन्मदिन मनाया, माता पिता ने ये संस्कार दिए, बलराम जी का जन्मदिन भी इस तरह से मनाया गया। और जब साधुओं का जन्मदिन होता है तो उनको हम चरणों में वंदन करते हैं, उनकी कृपा याचना आशीर्वाद चाहते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं, और वो भी दक्षिणा लेते हैं साधुजन और तुरंत भगवान की सेवा में उसको अर्पण कर देते हैं। अपने पास कुछ रखते नहीं, जो जिसका है उसी को दे दिया। जो शरीर को चरचार चलाने के लिए आवश्यक है उतना रख लिया, बाकी सब जो है उनके चरणों में अर्पण कर लिया, पूरी तरह से उन पर निर्भर रहते हुए। जिन्होंने जन्म दिया है वही पालेंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठेविले अनंत तैसे च रहावे, ये हमारी संस्कृति है। जब एक्यूमुलेशन संचय होता है ना, तो दुख की आरंभ, दुख की शुरुआत होती है। दुख आरंभ कब होता है? जब सब संचय करते हैं हम लोग, जब देते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। और जो पेड़ अपने फल दूसरों को देता है, भगवान उस पेड़ को और फल देते हैं ताकि वो और लोगों को बांट सके। अगर पेड़ को, पेड़ ने फल देना बंद कर दिया तो उसकी जगह पर नया फल नहीं आएगा। तो पेड़ की प्रवृत्ति है देना, भगवान की प्रवृत्ति पेड़ को देना, पेड़ की प्रवृत्ति है लोगों को देना। वो छाया भी देता है, अपनी शाखा भी देता है जलाने के लिए ठंडे में, और गर्मी में अपनी छाया भी देता है अपने शाखाओं से। इस प्रकार के पेड़ का जीवन कैसे होता है? देना देना और देना। तो आज हम यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए आए हैं। आते वक्त मैं और दुबे जी चर्चा कर रहे थे, कहाँ गए दुबे जी, कि भारत में ये हरे कृष्ण संस्था जो है ना, वो एक संस्था है जो जन्माष्टमी के 15 दिन पहले और जन्माष्टमी के 15 दिन बाद तक जन्माष्टमी मनाते रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अरे अष्टमी तो हो गई, अभी भी इनका जन्माष्टमी। तो इसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य ये है कि भगवान का जन्म तो रोज होता है। आइए एक मिनट सब लोग खड़े हो जाइए, भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। आइए भगवान आपके तरफ से स्नान करा के, अभी अलंकार करके, सुशोभित होकर आपके सामने दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। देवाचिया दारी उभा क्षण भरी, पुण्याची गणना कोण करी? तैसा हमारे भगवान, हाँ, तेणे मुक्ति चारी साधी एला। अरे चारों मुक्ति उसके हो गए जो भगवान के सामने एक क्षण के लिए खड़ा हो गया, लेकिन कैसे? हृदय पूर्वक समर्पित भावना से, आत्मा से, तन मन संधन से, बुद्धि से, अहंकार से उनके सामने खड़े हो गए ना, तो और कोई प्राप्ति नहीं जिंदगी में, सबसे प्राप्ति वही है। बैठ जाइए सब लोग। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान का जन्म रोज होता है। कैसे होता है रोज? जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे हृदय के आंगन में रोज उनका जन्म होता है। इसलिए भक्त लोग जो है वो श्रावण वद्य अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाते ही हैं, लेकिन साल भर भी मनाते हैं। रोज सुबह जब उठते हैं और उनका नाम लेते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जैसे भी समय मिलता है, तो रोज उनके हृदय के आंगन में, जिह्वा के आंगन में भगवान का जन्म होता है। और यही समझना बहुत जरूरी है। साल भर का एक दिन मनाने का उत्सव यह है, क्योंकि बाकी लोग जो नहीं करते हैं जन्माष्टमी का उत्सव रोज, उनके लिए ये सूचना है कि ये दिन मनाइए और इसके आगे रोज मनाना शुरू कर दीजिए। जन्माष्टमी की सबसे बड़ी भेंट क्या है? भगवान का नाम। जो आज उत्सव उनके जन्मदिन का मनाते हैं, उसके बाद साल भर अगली तिथि आने तक उनके नाम लेकर रोज जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान के भक्तों के जीवन में रोज उत्सव है। एवरी डे इज ए फेस्टिवल। हाँ, जब चलते हैं तो वो डांस है, जब कुछ कहते हैं तो वो गीत है। इस प्रकार से भक्तों का जीवन जो है वो भगवान के नाम की वजह से रोज उत्सव का बन जाता है। तो ऐसे ही जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ गोकुल में, मथुरा से जन्म हुआ, फिर गोकुल में आए, आप लोगों ने कहानी सुन ली होगी, लेकिन संक्षेप में आपको बता देते हैं कि वसुदेव के अष्टम पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। और यहाँ तक लोग जानते हैं, लेकिन आगे का जो गोकुल का रहस्य है वो नहीं पता है उनको। नंद बाबा को भी पुत्र प्राप्त हुआ था, बड़े 18 कोटि गोपाल यज्ञ, गोपाल मंत्र आहुति अर्पण करके जो गोपाल यज्ञ संपन्न हुआ 18 कोटि, उसके बाद नील तेज निर्माण हुआ, आकाश में गया, बालक का रूप धारण करके नंद महाराज के हृदय में प्रवेश किया। फिर वो बालक स्वरूप नील तेज यशोदा के हृदय में स्थित हुआ, फिर वो गर्भ में स्थित हुआ एक कन्या के साथ, योग माया और कृष्ण भगवान यशोदा के गर्भ में स्थापन हुए। और 8 महीने के पश्चात उनका जन्म हुआ। जब यहाँ पर देवकी के कंस के कारागृह में देवकी को पुत्र हुआ, वो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। और द्वितीय चरण में श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, और तृतीय चरण में यशोदा को पुत्र हुआ और पुत्री हुई। लेकिन योग माया के प्रभाव से वो सब लोग सो गए, जैसे यहाँ पर सो गए ना, वैसे उधर भी सो गए। एक ही व्यक्ति जगा था, वो है वसुदेव। वो जमुना जी को पार करके आया, और जब पहुँचा तो जैसे ही वो बालक, जैसे आदेश दिया था रखने का प्रयास किया, तो बालक जो यशोदा के गोद में थे उस बालक में वो एक हो गए, विलीन हो गए। तो 2 कृष्ण थे, देवकी कृष्ण, यशोदा कृष्ण, यशोदा कृष्ण में लीन हो गए। फिर वो कन्या को गोद से उठाकर वो चले गए वापस। तब जाकर नंद बाबा के बहन को स्वप्न आया है कि मेरी भाभी को पुत्र हुआ है, तो वो भाग भाग के नंद भवन में सूतिका गृह में दौड़ती आई, अरे भाभी अभी कहाँ हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तभी यशोदा की नींद खुली है, तब अपने गोद में उन्होंने कृष्ण को पाया है। इस प्रकार से कृष्ण का जन्म गोकुल में भी हुआ है और मथुरा में भी हुआ है। बलराम जी रोहिणी के गर्भ में भी थे और वो देवकी गर्भ में भी थे। योग माया ने उनको देवकी के 7वें गर्भ के रूप से संकर्षित करते हुए रोहिणी माता के गर्भ में विस्थापित कर दिया। तो रोहिणी वाले बलराम जी में देवकी वाले बलराम जी विलीन हो गए, जो ओरिजिनल बलराम जी है, जो मथुरावासी वृंदावन के मथुरावासी जो बलराम जी है वो गोकुलवासी बलराम जी के अंदर विलीन हो गए, और जो मथुरावासी कृष्ण है वो यशोदा वाले कृष्ण के अंदर विलीन हो गए। ये सब रहस्य की बातें हैं। हाँ, और योग माया वहाँ बीच में कैसे आ गई? जबी गाय बनकर पृथ्वी ब्रह्मा के पास रोते हुए गई थी कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है, कुछ बचाओ मुझे, कैसे भी करके बचाओ, तो ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास ले गए थे, विष्णु उनको गौलोक वृंदावन ले गए थे। तब श्री हरि कृष्ण ने दर्शन दिया था उनको। तब उस समय भगवान ने सभी देवताओं को आदेश दिया है कि कि आप सब अभी चले जाओ, कोई वृष्णि वंश में जन्म ले लो, कोई द्वारका में ले लो, कोई मथुरा में ले लो, कोई गोकुल में ले लो, अपना अपना पोजीशन ले लो, मैं आ रहा हूँ। सबको अपना रोल बता दिया, सूर्य को बताया भानु बन जाओ, हाँ अश्वत्थामा को बता दिया मतलब शंकर भगवान को अश्वत्थामा बन जाओ, वसुओं को बता दिया आप भीष्म बन जाओ, इस प्रकार सभी लोगों को आदेश दिया विस्तार रूप में, बड़ा चैप्टर है उसके अंदर, हर एक व्यक्ति को आदेश दिया कि आपको क्या क्या बनना है। और वो चले गए, तभी उन्होंने योगमाया को बुलाया और कहा कि जब मेरे 6 बालक होंगे तो 6 बालक का शाप है उनको हिरण्यकश्यपु का कि उनके ही पिताजी के हाथ से उनका वध हो जाएगा। तो वो कंस है जो काल नेमी था पहले जन्म में, इस जन्म में कंस बनकर आया है, उसके हाथ से वो 6 बालकों का वध होगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। 7वें बालक के रूप में मेरे अंशावतार अनंत शेष बलराम जी संकर्षण जन्म लेंगे और उस गर्भ को आपको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में विस्थापित करना है। इस सेवा के लिए मैं आपको मेरी बहन बनाऊंगा और जिस गर्भ में मैं आने वाला हूं उसी गर्भ में आप भी निवास करेंगे, मेरी माता के गर्भ में। तो इस प्रकार से योगमाया भगवान की सेवा करने के पश्चात उनकी बहन बनी है और फिर भगवान के ही गोद में यशोदा के गर्भाशय में वो 8 महीने रही है और उनका 7वें जन्म हुआ है। और फिर वो उन्होंने और एक सेवा किया है, जब उनको ले गए तो आकाश में उड़ गई और बताया कि हे मूर्ख कंस, देवकी को यातना देना बंद कर दे, तेरा काल कहीं और पल रहा है सुरक्षित रूप से। तो ये सब बातें जो है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान का जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, वो अवतारी पुरुष हैं जिनसे द्वारा अवतार प्रकट होते हैं और वो स्वयं भी प्रकट होते हैं। इसका प्रूफ क्या है? जब देवकी के सामने प्रकट हो गए तो 4 भुजा वाले फुल पूरी तरह से जिनकी वृद्धि हो गई है, जो एडल्ट है ना, एक व्यक्ति पूरी तरह से 4 भुजा वाले लंबे लंबे बाल उनके कंधों पर बह रहे हैं, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, वैदुर्य का मुकुट पहना हुआ है, कौस्तुभ मणि है उनके, श्रीवत्स मणि का चिन्ह है, ऐसे पूरे श्रृंगार के साथ उत्पन्न हो गए वो और सीधे संवाद किया, हे माता पिता चिंता मत करना, आपने मेरे लिए तपस्या की थी पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति करने के लिए, पहले मैं आपके सामने प्रश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हुआ था जब आप सुतपा और प्रश्नी के रूप में थे, अगले अवतार में मैं वामन देव बना तभी आप अदिति और कश्यप मुनि थे, अब ये तीसरा टाइम है, ये तीसरा समय है जब आप देवकी वसुदेव बनकर आए हो और मैं श्री कृष्ण बनकर आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। उनको सांत्वना देने के लिए, भय निवारण करने के लिए सब इतिहास बताते हैं और कहते हैं आप कंस को डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसका संहार करने के लिए आया हूँ। तो दोनों का भय मुक्ति हो गई, भगवान का दर्शन करते ही सारे मन के भय का नाश हो गया। हमारे जीवन में भी जब श्री कृष्ण भगवान प्रवेश करते हैं, जब उनको प्रवेश करने देते हैं, जब उनका नाम उच्चारण करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन के जितने भी भय है, जो आपके लगता है भय आपके मन में है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है भगवान का जन्म होने पर? जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, द्वेष, अहंकार, प्राइड, जितने भी विकार हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति कुछ आपके मन में किंतु परंतु, क्या प्रूफ है इसका? उसके बाद जब कंस आया और देवकी के चरणों में गिर गया, वो देवी का वचन सुना उसने, डर गया बेचारा, वो चरणों में गिर गया, बहन जी को माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा कि अरे मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो विधाता के हाथ में कठपुतली हूँ और मेरे हाथ से वध नहीं हुआ है, ये करवाया गया है, हम सब कठपुतलियाँ हैं, इसलिए बहना आप मुझे माफ़ कर देना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भी एक कठपुतली हूँ। इस तरह से वो मराठी में क्या कहते हैं, सारवा सारव, हाँ, अपने जो गुनह किए थे उसके लिए जस्टिफाई करते हैं। और कहा गया है कि देवकी ने उनको तुरंत ही माफ़ कर दिया। अगर हम और आप उनकी जगह पर होते तो माफ़ करते क्या उसको? जिसने आँखों के सामने 6 बालकों को पटक पटक कर पीस दिया है, जिस बालक को 6 बालकों को एक के बाद एक कर दिया है, कौन सी ऐसी माता है जो ऐसे व्यक्ति को, भाई भी क्यों ना हो, तुरंत माफ़ कर सके? लेकिन देवकी ने क्षमा कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। और आचार्य लोग समझाते हैं कि क्षमा कैसे कर पाई हो, उसका उत्तर यह है क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने श्री कृष्ण का दर्शन किया था, श्री कृष्ण से वार्तालाप किया था, श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनी थी, आश्वस्त वाणी सुनी थी, भय का नाश हुआ था और भय के साथ जो भी मन में किंतु परंतु क्रोध उसके प्रति गुस्सा था वो सब भी नष्ट हो गया था, इसलिए माफ़ी मांगते ही कंस को तुरंत ही माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें भी किसी को क्षमा करना है तो श्री कृष्ण भावना के बगैर हम किसी को क्षमा करने के लिए उद्युक्त नहीं रहते। वी आर नॉट ईगर टू फॉरगिव एनीबडी। कृष्ण को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति है वही किसी को क्षमा कर सकता है, क्योंकि कृष्ण उसको क्षमाशील बना देते हैं। कृष्ण का अस्तित्व, कृष्ण की उपस्थिति उस व्यक्ति को सौम्य बना देती है, मृदु बना देती है, कठोरता से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है, और जितने भी अपराध होते हैं वो अपराध कहते हैं संत लोग अपराध होने के पहले ही उसको माफ़ कर देते हैं, अपराध को स्वीकार ही नहीं करते। ये बहुत दिव्य भावना है, क्योंकि हमें दूसरों को क्षमा किए बिना भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। ध्यान रखना, जब अंतिम समय आएगा और भगवान के पास जाना है कि वापस दुनिया में लौट के आना है, ये जब निर्णय करने का समय आता है और अगर हम क्षमा करने में हिचकिचा रहे हैं तो दोबारा हमको आना ही पड़ेगा। और अगर हमने सबको क्षमा कर दिया है तो हमारे अपराधों को भी क्षमा कर दिया जाएगा और हम क्लीन स्लेट हो जाएंगे, कोरी पाटी, और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए हम योग्य हो जाएंगे। ये इसका फॉर्मूला है। इसलिए हमारा हित किस में है? क्षमा करने में है। जब क्षमा करते हैं तो क्षमा प्राप्त होती है, क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी हमारे अपराधों के लिए क्षमा नहीं मिलती है। तो ऐसे ही भगवान का दर्शन का रहस्य है। अभी जन्म हो चुका है, अभी वसुदेव जी परेशान हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे बालक को मैंने जैसे ही हुआ वैसे मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ। उनको ये पता नहीं है कि मेरा बालक उस बालक में विलीन हो गया है। उनको ये पता है कि मेरा बालक वहाँ खेल रहा है मेरे मित्र नंद के आंगन में, अभी मेरा कर्तव्य है संस्कार करना है उसका। वो मेरे कुल गुरु गर्ग मुनि हैं, तो गर्ग मुनि को बुलाते हैं गुप्त रूप में, कहते हैं कि मेरे बालक वहाँ पर रेंग रहे हैं, खेल रहे हैं, आप जाइए उनका नामकरण विधि कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप मेरे कुल गुरु हैं और अगर आप जाकर गोकुल में किसका नामकरण करते हैं तो कंस को डाउट आएगा कि आपके बालक वहीं पर हैं, इसलिए आपने आपके पुरोहित को वहाँ भेजा है, इसलिए गुप्त रूप में नामकरण करना उनका। क्योंकि जो कुल पुरोहित होता है उसी कुल के लोगों का संस्कार करता है वो, और वो नंद महाराज का कुल पुरोहित तो है नहीं, और जाके करने वाला है कृष्ण बलराम का नामकरण, तो कंस को तो निश्चित डाउट आएगा कि मेरा काल जो है वो नंद के घर पे है। इसलिए कहते हैं कि गुप्त रूप में करना। तो गर्ग जी आते हैं, नंद को प्राइवेट में मिलते हैं और समझाते हैं कि ऐसा ऐसा रहस्य है, किसी को बुलाना नहीं आपको, किसी को खबर भी नहीं करना कि मैं आया हूँ। तो नंद बाबा उनको प्रॉमिस करते हैं कि गौशाला में केवल मैं, मेरी पत्नी यशोदा, मेरी दोस्त की पत्नी रोहिणी, उसका बालक बलराम और हमारा बालक कृष्ण, इसके अलावा और गायों के अलावा कोई नहीं होगा। गाय तो किसको बताएंगे नहीं, हम लोग नहीं किसको बताएंगे, और आप रहेंगे। ऐसे तरह से प्राइवेटली गौशाला के अंदर नामकरण विधि करने का निर्णय लेते हैं। तो नंद बाबा बताते हैं यशोदा को कि अभी हमको गुप्त रूप में जाना है, किसी को बताना नहीं है, और महान आचार्य गर्ग आचार्य मथुरा से आए हैं, वसुदेव की तरफ से आए हैं, महापंडित है, महाविद्वान है, दूरदृष्टा है, त्रिकालदर्शी हैं। तो बड़ा उनको भाग्य लगता है हमारे पुत्र के लिए इतने दूर से इतने बड़े महान ऋषि आ गए। लेकिन सोचते हैं, देखो ब्रजवासी है ना, बहुत सिंपल हार्टेड होते हैं और चतुर भी होते हैं बहुत। क्या सोचते हैं, चलो थोड़ा परीक्षा कर लेते हैं हमारे महाराज जी की, कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े त्रिकालदर्शी हैं। तो क्या करते हैं, रोहिणी दीदी मेरे बालक को आपकी गोद में लेना, आपके बालक बलराम जी को मेरे गोद में रखना, और फिर हम उनको पूछेंगे कि हमारे बेटे के बारे में बताइए, उसका नाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। तो अभी समझ में आया ना आपको, दोनों एक दूसरे के बालक को लेकर गोद में बैठे हुए हैं और बड़ी नम्रता से महाराज जी को पूछते हैं, महाराज जी गर्गाचार्य जी, ये हमारे गोद में जो बालक बने हैं उनका नामकरण कीजिए, उनका भविष्य बताइए। तो गर्ग मुनि जो है ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, यशोदा जी जो आपके गोद में विराजमान है वो रोहिणी के पुत्र हैं, और रोहिणी जी आपके जो गोद में विराजमान है वो यशोदा के पुत्र हैं, और फिर उनका नामकरण करते हैं। तब जाकर तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं कि संतों की कोई परीक्षा नहीं करनी चाहिए, संत त्रिकालदर्शी है, उनके नजर से कोई चीज छुपती नहीं है। तो फिर एक विशेष बात बताना चाहता हूं, क्योंकि द्वितीय चरण में वसुदेव देवकी के बालक का जन्म हुआ था तो वो रोहिणी नक्षत्र द्वितीय चरण के तरफ से अक्षर क्या आता है, वा, तो उसका नाम वासुदेव रखते हैं। और तृतीय चरण में जो आए हैं गोकुल में, उनका नाम निकलता है वी, तो उनका नाम रखते हैं विहारी। हाँ, यमुना विहारी, वृंदावन विहारी, गोकुल विहारी, ऐसे वी नाम आता है। तो ये वा और वी भी साइंटिफिक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। उसके बाद में उनका नामकरण होने की विधि होती है, तो गर्गाचार्य बताते जाते हैं कि ये दोनों इतने महान हैं, पहले बलराम जी का नाम रखते हैं कि ये बल के स्रोत हैं, इनके अंदर इतना बल है कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे दिव्य लोक, पूरे वैकुंठ लोक इनके क्या कहते हैं फनों पर धारण किए हुए हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी है। और राम इनका नाम है क्योंकि ये सबको आनंद देने वाले हैं, रमेति इति रामः, सबको रमण कराते हैं, सब इनमें रम जाते हैं, इसलिए इनका नाम बलदेव भी होगा, बलराम भी होगा और बल भी होगा, ऐसे बहुत वर्णन करते हैं। और ये कृष्ण का आधार होंगे, कृष्ण की सहायता करेंगे, कृष्ण के लिए वात्सल्य प्रेम करेंगे, कृष्ण के लिए सख्या सखा भाव भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, पांचों रसों में भगवान की सेवा करेंगे। फिर वो कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि ये बालक जो है ये कई जन्म ले चुका है, कई अवतार ले चुका है, कई लीलाएं कर चुका है, ये परम भगवान है, परात्पर भगवान है। और ऐसे करते करते ना एक कथा याद आती है उनको, जो भागवत में नहीं है लेकिन ब्रजवासी बताते हैं। वे कथा है कि भगवान का नाम उन्होंने कह दिया बीच में, और ये भी वर्णन किया कि आगे जाके ये गोवर्धन को उठाएगा, इसका नाम गिरिधारी होगा। अभी देखो आपके गोद में छोटा सा बालक है और आगे ही वो जाकर गिरिराज पर्वत गोवर्धन को उठाएगा, तो कितनी आश्चर्य की बात है ना, इतना सा बालक आगे गिरिराज उठाए, तो बिलीव करे या ना करे आगे की बात है, लेकिन वो कहते हैं कि इनका नाम गिरिधारी होगा। और 7 साल के बाद वो गोवर्धन को उठाते हैं, तभी नंद बाबा को याद आती है कि गर्गाचार्य ने कहा था कि एक दिन ये पर्वत उठाएगा। सब ग्वाल बाल सभी बैठ के गोपाल चर्चा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा बालक तो बहुत ऋषि मुनि होगा, कोई कोई देवता होगा, कोई सिद्ध पुरुष होगा, अरे इसने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो कहते हैं हाँ मुझे याद है कि गर्गाचार्य ने कहा था जब वो नामकरण करने आए थे, तो सारे गोपालों को बहुत गुस्सा आता है उस समय, अरे इसका नामकरण करने के लिए इतने बड़े प्रोग्राम के लिए गर्ग मुनि आए थे, आपने हमको बताया नहीं, छुपा के रखा हमसे, आपको हम गोपाल की कम्युनिटी से बरात क्या कहते हैं उसको दर क्या कहते हैं उसको बरी कर देते हैं, वी रेस्टिकेट यू फ्रॉम गोपाल कम्युनिटी। तो फिर विश्वानु महाराज जो थे ना राधा रानी के पिताजी, वो समझाते हैं उनको, अरे बाबा समझो जरा बात को, कंस का भय था उस समय, वसुदेव का निर्देश था, हाँ वसुदेव का निर्देश था, और उनके आदेश के अनुसार कृष्ण बलराम के जीवित को हानि नहीं होनी चाहिए, उनका संकट नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको गुप्त रूप में नामकरण किया था। तब सब लोग शांत हो गए थे। तो इस तरह से उनकी कहानी है कि एक बार एक किसान को नारद मुनि मिले और किसान को उन्होंने बताया कि भगवान का नाम लो, तो किसान कहता है नहीं भगवान का नाम लेने के समय किधर है, सुबह हमने आज वाक्य सुना था एक, नो टाइम इज द क्रॉनिक डिसीज ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, समय ना होना ये सब लोगों का एक बड़ा रोग है। हाँ दिन भर व्हाट्सएप पे बने रहेंगे लेकिन भगवान का नाम कहने के लिए बोलेंगे तो समय नहीं है, मंदिर में आने के लिए बोलेंगे समय नहीं है। उसी प्रकार से उस किसान ने नारद मुनि को बताया कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसने कहा एक काम करो, जब तुम ये खेती करते हो ना उस समय नाम लेते रहो। तो उन्होंने उनको भगवान का नाम दे दिया, फिर उसने हर कुछ करते हुए वो नाम लेना शुरू कर दिया। तो उसकी पत्नी जो है ना वो उनको भोजन देने के लिए आई, तो उन्होंने पत्नी को कहा जो मेरे नाम में मुख में नाम चल रहा है अभी आप उसको ले लो, आप सुन रहे हो ना, आप उसको ले लो तब तक भोजन कर लेता हूँ। तो तब तक उसकी पत्नी नाम, क्योंकि अखंड नाम है ना, अभी दिन भर लेना है, बैठ के लेने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हो उठ रहे हो उठ रहे हो बात कर रहे हो कुछ सब कुछ करते हुए करना है, लेकिन जब खा रहे हो तो मुँह बिजी हो गया इसलिए नाम नहीं ले पा रहे हो, तो आप लीजिए। तो पत्नी अभी नाम ले रही है, और पत्नी नाम ले रही है, एक भोजन कर रहे हैं, भोजन समाप्त हो गया, बोलते हैं अभी मुझे नाम दे दो, तो पत्नी यहाँ वहाँ देख के नाम बोल रही है भूल जाती है और कहती है फिसल चंद्र, क्या बोला क्या बोला, फिसल चंद्र, ठीक है ना। तो वही जपना शुरू कर दिया, अभी किसान क्या बोल रहे हैं, किसान क्या बोल रहे हैं, अरे कोई लोग बोल ही नहीं रहे क्या बात है, फिसल चंद्र बोल रहे हैं। तो वहाँ गौलोक में राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं, तो राधा रानी कृष्ण को बोल रही है, अरे ये की भी कोई नाम हो गया, ये आपको ऐसे क्यों पुकार रहा है? तो कह रहा है कि, कृष्ण कहते हैं कि जाओ पूछ के आओ उसको। तो राधा रानी को अच्छा लगा ना, हमारे इतने प्रिय सखा को फिसल चंद्र बोल रहे हैं, मतलब क्या हमेशा फिसलने वाला, तो शंका होती है। तो कहते जाओ जाओ तुम उसको पूछ के आओ। तो राधा रानी एक सादी गोपी बनकर नीचे आती है और किसान से पूछती है, अरे भाई तुम क्या पुकार रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? तो अब ये मालूम है ना आपको गांव में कैसा होता है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पर देसी भाषा में, तुम्हारे डैश डैश का नाम ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के बोल नहीं सकता। तो वो बोला कि तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ, मतलब तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूँ, ताकि तुम चले जाओ यहाँ से, बेकार के प्रश्न मत करो। तो वापस आई, बार बार पूछा तो वही कह रहा कि तुम्हारे पति का नाम ले रहा हूँ। तो नाराज हो गई वो, वापस गोलोक लौट के आई और कृष्ण को पूछा कि वो कह रहा है कि तुम्हारे पति का नाम ले रहे हैं। हाँ मैं तो आपका पति तो हो ही ना। तो कहते हैं कि फिर तुम्हारा ये नाम कैसे पड़ गया? तो कृष्ण कहते हैं, सही तो है मैं तुम्हारा पति हूँ, जब मैया मेरा श्रृंगार करती थी, चंदन लगाती थी, अगरू लगाती थी, पीताम्बर धारण कराती थी, बहुत मालाएं पहनाती थी, अलंकार पहनाती थी, क्या क्या नहीं पहनाती थी, सुंदर सज धज के मैं निकलता था और एक ही सेकंड में गौशाला में गोबर में फिसल कर गिर जाता था और गोबर गौमूत्र का मिश्रण मेरे चंदन अगोरू को लग जाता था, तब मेरा माँ ने नाम रखा, अरे फिसल चंद्र तू तो फिसलने वाला है, तो ये माँ ने रखा हुआ बोनाफाइड नाम है। तब राधा रानी संतुष्ट हो गई। बहुनी संतानी मानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्माणी रूपाणी नान्यहम वेदोनो जनाः, ऐसा ये भगवान के विषय में वर्णन दिया है। तो इसके बाद में यशोदा दीदी कहती है, बहुत सारा प्रश्न पूछती है, कहती है कि अरे इसके बारे में तो भविष्य बता, भविष्य की इसका शादी वादी होगा कि नहीं? तो गर्ग मुनि ध्यान करते हैं, क्या ध्यान में देखा होगा उन्होंने, क्या ध्यान में देखा होगा, सब उनको पता है ना, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, हुआ था अभी क्या होने वाला है, सब पता है उनको। तो वो ना जोर से हंस पड़ते हैं, अरे मैया आप पूछ रहे हो विवाह होगा कि नहीं, अरे ये लाखों विवाह करेगा, उसमें से तो 16,108 तो पटरानियां बनाएगा द्वारका में, और यहां पर ब्रज में सभी गोपियां उनकी पत्नी की तरह रहेंगी, और वहां पर सिंधु नरेश राजा है, जो आज के सिंध प्रांत में सिंधु नरेश बिमल राजा है, उसके 3 करोड़ कन्याओं से भी वे विवाह करेगा। तो उनको लगा हमने पूछा था विवाह होगा कि नहीं, अभी समस्या है इतनी सारी पत्नियां कहाँ रखें। इस तरह से भगवान जो है ना वो नामकरण होता है उनका, और रोज श्रृंगार करते हैं और वो जो गौशाला चले जाते हैं, और गौशाला चले जाते हैं ना तो दोनों घुटवन चल रहे हैं अभी, हाँ घुटने के बल पे चल रहे हैं, घुटने सारे पहले से ही गोबर में भर चुके हैं ना, आगे जाते हैं तो बछड़े खड़े हैं वहाँ पर ऐसे उधर मुंह करके, उनकी पूंछ अपनी तरफ है, तो वो क्या करते हैं बच्चे पता है आपको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जाके वो पूंछ पकड़ते हैं, पूंछ पकड़ते ही बछड़े बिथर जाते हैं ना, अरे कौन पीछ पकड़ रहा है, तो वो भागने लगते हैं, ये बच्चे पूछ छोड़ते नहीं है, तो क्या होता है, क्या होता है, बच्चे ने पूछ पकड़ी हुई है, बछड़ा भाग रहा है, बच्चा पूछ नहीं छोड़ रहा है, तो बच्चे को चलने को नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो पेट के बल पे गिर जाएगा, और पेट के बल पे गिरते पेट किस पे गिर रहा है, जहां पर गोबर गोमूत्र का बहुत चिकना चिकना मिश्रण है, अच्छा बहुत चिकना, आप अच्छी तरह से पूरे गौशाला में घूम सकते हो। तो गौशाला में गौ जो बालक हैं बछड़े हैं वो डर डर के सब जगह भाग रहे हैं, और उनके पीछे दो जो है पकड़ के पूरे ब्रज में पूरे गौशाला में घूम रहे हैं, रोहिणी देवी देख रही है, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, हमारे दो नन्हे नन्हे बालक जो है वो गोबर गोमूत्र के मिश्रण में पूरे गौशाला घूम रहे हैं, दीदी जल्दी आ जाओ देखो आप देखो। यशोदा दीदी भाग के आती है और देखती है कि कैसे हमारे दोनों बालक जो है वो गोबर में घूम रहे हैं। तो उधर उसमें यशोदा माँ क्या कहते हैं, अरे अभी कैसे हैं बालक, लोटपोट हो गए हैं, पूरा गोबर लगा हुआ है, इधर चंदन अगुरु है, इधर गोबर लगा हुआ है, तो कहते हैं त्वम सुकरोसी गत जन्म निपुत नारे, अरे क्या तुम पिछले जन्म में सुअर थे क्या जो मलमूत्र में घूम रहे हो? तो कहते हैं हाँ मैया मैं पिछले जन्म में सुकर था। तो मैया जोर से ठांगा मार के हंसती है, उसको पता नहीं कि ये सत्य है, उसको लगता है बालक ऐसे ही अपना पुस्ता के भी बोल रहा है। हाँ तुम सुकर होसी गत जन्म निपुत नारे, के मूर्ख व्यक्ति तुम पिछले जन्म में सुकर सुअर थे क्या? कहते हाँ मैं सुअर था। तो इसके बाद में कहा है कि माता जी को बालक ने शुकर यानी कि वराह देव का दर्शन कराया है। बहुत सुंदर कहानी है। देखो आगे जाकर एक कहानी ऐसी आती है कि ये सुखदेव जी जो है ना, वो भागवत जिन्होंने लिखा है, भागवत कह रहे हैं, वो इस जो वस्तु जो कृष्ण के शरीर को लगा हुआ है उसको अंगराग कहते हैं। आजकल नेचुरल आयुर्वेदिक मार्केट में भी वस्तु मिलती है अंगराग नाम की, वो भी गोबर से ही बनती है। उसके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट गोबर और गौमूत्र होता है और बाकी जड़ी बूटियाँ होती है, वो क्या वो मुल्तानी मिट्टी होती है, क्या क्या होता है वो सबसे मिलकर एक तो पाउडर बनती है या तो एक साबुन बनता है जिसको हम मराठी में उपटन कहते हैं। उपटन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उठना उठना, हिंदी में उपटन कहते हैं। उसी को संस्कृत में अंगराग कहते हैं और अंगराग का प्रमुख हिस्सा है गोबर और गौमूत्र। इसके बाद में एक बार श्री कृष्ण भगवान बहुत मस्ती कर रहे थे तो यशोदा ने कहा कि तुमको डरने लगता क्या, अभी तुम ज़्यादा मस्ती करोगे ना तो हवा आ जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे देखो अभी आप शरारत कर रहे हो, माता आपको डराने के लिए कुछ कह रही है। वो बालक क्या कह रहा है, अरे मैंने तो इतने जन्म लिए कभी हमने हवा को नहीं देखा। अच्छा तुमने कहाँ जन्म लिए? तो उस समय बालक ने भगवान माता जी को दशावतार का दर्शन कराया है और वो स्थान कहाँ है? हाउ बिलाऊ। और वो हाउ बिलाऊ क्या है कि कंस के तरफ से चार लोग आए थे भगवान को पकड़ने के लिए नंदगांव में, लेकिन शांडिल्य मुनि का शाप था कि कोई भी राक्षस यहाँ पर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। तो जैसे नंदगांव में उन्होंने प्रवेश किया चार लोगों ने, तो चारों बहुत विशाल पत्थर बन गए और उसको हाउ बुलाऊ नाम रखा गया। और कृष्ण शरारत करने पर उसको डराने के लिए हाउ बुलाऊ का डर दिखाने लगे यशोदा माई, रोहिणी कुमार, रोहिणी रोहिणी माता जी और यशोदा माई। तो वो हाउ बुलाऊ के पास वो पीट करके खड़े हैं और मैया कह रही है पीछे से हवा आ रहा है और ये कह रहा है कि मेरे सारे अवतारों में हवा का दर्शन नहीं किया। अच्छा तुमने भी बहुत अवतार लिए किया तो दिखा दो ना, ऐसे मैया मजाक में कह रही है। तुरंत कृष्ण ने उनको दशावतार का दर्शन किया, लेकिन माया और ममता और वात्सल्य इतना तेज था कि कुछ ही देर में मेरे इसी बालक ने 10 अवतार का दर्शन कराया, ये मैया भूल जाती है। वे समय बहुत कम है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान रेंगते रेंगते थोड़े से बड़े हो गए, मतलब अपने आप में शरारत करने योग्य हो गए, तो उन्होंने अपने घर से अपने माखन चोरी का करियर शुरू किया अपने घर में। और वो जमाने में ना मक्खन के बड़े बड़े गोले बनाते थे, अभी भी ब्रज में आप जाएंगे ना वृंदावन में तो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में बड़े बड़े मक्खन के गोले से भर के रखते हैं। वो मक्खन स्टोर कैसे करते हैं? गोला गोला बना के रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, जाके रेंगते रेंगते जाते हैं और मैया के बड़े मटके से एक गोला ले लेते हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको अपने जैसा एक और बालक दिखाई पड़ता है। का कारण क्या है? क्योंकि नंद भवन में ऐसे बहुत पिलर है, पिलर खंभे हैं, हाँ स्तंभ है, स्तंभ जो स्फटिक मणियों से बने हुए हैं जो आईने की तरह है। तो जैसे ये भाग रहे गोला लेकर, वैसे ही गोला लेकर भागता हुआ बालक दिखाई पड़ता है, वैसे ही नीला, वैसे ही शरारती आंखें उसकी चटपट कर रही है। तभी क्या हो रहा है, वो खंभे से जो प्रतिबिंब है ना उससे बात कर रहे हैं, अरे तू तो मुझसे बड़ा चोर है, ऐसा ये कृष्ण उस खंभे वाले को बोल रहे हैं। और वो भी साथ ही बोल रहा है, अरे तू तो मुझसे बड़ा चोर है। उसके बाद में वो कहते हैं देखो मैं भी चुप रहूंगा तुम भी चुप रहो। तो साथ में वो भी बोलता है मैं भी चुप रहूंगा तुम भी चुप रहो। और पीछे से मैया कह रही है अरे कन्हैया कहाँ हो? तो ये चुप, कुछ नहीं बोल रहा है। और बाद में ये जो संभाषण चल रहा है ना, ये मैया सुनती है कि अपने ही प्रतिबिंब से ये बात कर रहा है और वो बात कर रहा है इसलिए परेशान है, ये बात कर रहा है इसलिए वो परेशान है, दोनों परेशान है। और फिर मैया ना बार बार पुकारती है अरे कन्हैया कहाँ हो? फिर एक श्लोक है उसका, आप ध्यान से सुनिए, इतना सुंदर श्लोक है, कृष्ण क्वासी, मतलब कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण क्वासी, करो सिखिम मतलब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पितृति मतलब क्या हुआ, अरे मेरे बाप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऐसे श्लोक का अर्थ है। तो फिर कृष्ण को पता चलता है कि अरे मेरी मैया आ गई। तो कृष्ण कैसे बात करते हैं अपने मैया से, माता तुम कितनी केयरलेस हो, केयरलेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ कितनी लापरवाह हो तुम, देखो तुम सब कुछ चीजें हो खुला छोड़ के जाती हो और बहुत दूर दूर से चोर आते हैं यहाँ पर और ले जाते हैं। अच्छा मुझे एक बड़ी समस्या है, मैं एक बड़ी समस्या में उलझा हूँ। तो क्या समस्या है? तो यशोदा कहती है अरे समस्या तो बड़े लोगों को होती है, बालकों को क्या समस्या है, उनको खेलना है केवल। नहीं नहीं मुझे बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि मैंने देखा हमारे घर में इतने बड़े महल में इतने अंदर के कमरे में एक चोर आया। छोटा सा बालक था, नीले रंग का था, उसने गोला लिया और वो खंभे में घुस गया। मैं उसे डांट रहा था तो मुझे कहता है, वही कहता है जो मैं कह रहा हूं। मैंने उसको आंख दिखाई गुस्से की, उसने मुझे गुस्से की आंख दिखाई। तो सदा कहती है बेटा ये तो तेरी परछाई है, अभी चोर बनकर संत बनने का प्रयास मत करना। मैं सब कुछ देखा है, तूने ही गोला चुराया है, तो अरे प्रतिबिंब है, तो फिर उसको गोद में ले दे। इस प्रकार से भगवान ने अपना चोरी करने का माखन चोरी करने का कार्य अपने घर से शुरू किया। और एक कहानी बताता हूँ आपको, हाँ बहुत सारी कहानी है। थोड़े बड़े हो गए कृष्ण अभी, अपने घर के बाद में घर में भरपेट माखन करने के बाद में दूसरे के घर में जाकर चोरी कर रहे हैं अभी। हाँ तो गोपी एक कहती है अरे चोर आजा आजा आजा, आज तुमको मैं मुभा देती हूँ मेरे घर में तो ढूंढ के निकालना मक्खन और चोरी करना। और उसने क्या किया है, एक ही मक्खन एक ही मटका तैयार किया है और वो मटका उसने अपनी उखल के नीचे रखा है, जहाँ से मैं बैठा हूँ ना उसके नीचे है, उसके ऊपर कुर्सी है, उसके ऊपर वो बैठी हुई है। तो वो सब ढूंढने जाते हैं, पूरा घर ढूंढे कहीं नहीं मिलता है उनको। जब गोपी के पास आते हैं तो मक्खन की खुशबू आती है, सुगंध आती है, समझ जाते हैं कि इसी के पास में कहीं है। गोल घूमते हैं फिर पता चलता है कि इसी के पास बहुत ज़्यादा सुगंध आ रही है। तो कृष्ण समझ जाते हैं कि इसी के क्या कहते हैं चौकी के नीचे मटका रखा है। तो वहाँ से अपने दोस्तों को इशारा करते हैं इस सब बछड़ों को छोड़ दो। तो गौशाला में जाते हैं, सब बछड़ों को छोड़ देते हैं, सब बछड़े भागते हैं अपनी मैया के पास आके सब दूध पी लेते हैं। तब कृष्ण आते हैं, देखो अरे गोपी गोपी देखो देखो सारे तुम्हारे बछड़े छूट गए, सारे गायों का दूध समाप्त कर चुका है वो। तो गोपी तुरंत भाग जाती है, तुरंत ये टोकरी उठाता है अपनी चौकी उठाता है और सारे माखन खाता है, सब दोस्तों को बुलाता है और सारे माखन आराम से खाता है। तभी ये गोपी जाती है वो गौशाला में, सब देखती है सब गायों के थन खाली हो गई है और लौट के इसको दंड देने के लिए आती है। तो ये दूर से भाग के कहते हैं देखो अगर ईमानदारी से पहले ही मक्खन दिया होता तो क्या होता, कम से कम दूध बच जाता। मुझसे शरारत किया तो मक्खन भी गया और दूध भी गया, अगली बार ऐसे मत करना। हरे कृष्णा। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने अपने ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया। सब माखन भी उनका ही है, सब धन भी उनका है, सब गाय उनकी है, सब भूमि उनकी है, सब कुछ उनका है। लेकिन वो एक चोर बनकर ब्रज में आकर चोरी करके लूटने का आनंद भी लेना चाहते हैं और ब्रजवासियों को अनंत आनंद देना चाहते हैं। तो भगवान को चोरी करने की जरूरत है क्या? तो सब कुछ उनका ही है, लेकिन जो उनका ही है वो किसी के हाथ में देकर उससे चोरी करके खाने में जो उनको आनंद है वो लूटने के लिए वो वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर आते हैं। वो बार बार किसी अन्य शास्त्रों में कहते हैं कि वैकुंठ का इतना ऐश्वर्य छोड़कर मैं गोपियों का छाछ चुरा कर खाने के लिए और मक्खन चुरा कर खाने के लिए आया हूँ ताकि उनको अनंत आनंद प्राप्त हो। तो ऐसे हमारे भगवान हैं कि अपने प्रिय भक्तों को चटपटा हृदय भराने वाला, हाँ क्या कहते हैं उसको, भाव विभोर करने वाला आनंद देने के लिए वो चोर बनकर भी आते हैं। और सभी गोपियाँ कंप्लेंट तो करती हैं लेकिन प्रार्थना भी करती हैं कि हे विधाता, जो भी कुछ है विधाता तो वही है लेकिन वो जानते नहीं वो विधाता है, उनके लिए कोई और विष्णु विधाता है, उसे प्रार्थना करते हैं कि आज ना मैं मक्खन बना रही हूँ, हो सके तो कृष्ण को मेरे ही घर में भेजना उसको चोरी करने के लिए। ये सोचकर ही बनाती है उसको कि मेरे घर में आके चोरी करे उसको। तो हमें भी देखना है कि हमारा दिल भी जो है ना वो दूध दही की तरह है, भक्ति करके उसको मक्खन बनाना है, ऐसा मीठा मक्खन बनाना है हृदय में हमारे कि भगवान भी उसको चुराने के लिए आ जाएं। हमारा हृदय ऐसे मीठे मीठे प्रेम भरे मक्खन से भरा हो जिसको देखकर कृष्ण भी आकर्षित हो और उसको वो चुरा ले, जैसे ब्रज में चुराया करते थे, सबका दिल चुराया करते थे वो मक्खन चोरी करके, वैसे ही हमारे हृदय का नवनीत जो है, हमारे हृदय सागर में जो नवनीत उत्पन्न होगा उसको इतना योग्य बनाए कि श्री कृष्ण उसको चुराने के लिए आए और चुराते समय हमें अपना बना ले। यही जन्माष्टमी का सार है कि हमें उनका होना है, उनका होने के योग्य बनाना है ताकि वो हक से हमको ले जाएं अपना बनाकर। अपना रे बोली अपना कहे, अपना बना ले, अपने पास रखे और जन्म मृत्यु के चक्कर से परमानेंटली हम सब लोग मुक्त हो जाएं। तो अभी क्या करना है? अभी तो उतने हमारे हृदय में इतना शुद्ध मक्खन तो नहीं बना है ना, अभी क्या करना है? अभी हमको वो मंथन करना है। मंथन क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये अंदर के दही का मंथन होगा ना, तो नवनीत उसमें निर्माण होगा, जिससे देखकर फिर कृष्ण आकर्षित होंगे और फिर वो लेने के लिए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।